जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिष्टवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम आठवा स्कंध चौबीसवा अध्याय भगवान का मत्स्यावतार श्लोक संख्या 14 तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञाति ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपम् यादोभ्यो ज्ञाति ख्यातिघातिभ्यो दीना मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपम् यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीना मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले। दो प्रभु जी दो माता जी। महाकारुणिकं नृपम् यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनवत्सल सृजसे राजन् तस्मिन् सरिज्जले साति करुणं कारुणिकं नृपम् अदोभ्यो ज्ञातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले साति करुणं कारुणिकं नृपम् यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले साति करुणं महाकारुणिकं नृपम् यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो मां दीनवत्सल विसृजसे राजन् तामस्मिन् सरिज्जले।
तम उससे सत्यव्रत से आह कहा सा उस छोटी मछली ने अति करुणम अत्यंत करुणामय महाकारुणिकम अत्यंत कृपालु नृपम राजा सत्यव्रत को यादोभ्यः जलचरों के द्वारा ज्ञाति घातिभ्यः जो छोटी मछलियों को खाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं दीनाम बेचारी माम मुझको दीनवत्सल हे दीनों के रक्षक कथम क्यों विसृजसे फेंक रहे हो राजन, हे राजा, भीताम अत्यंत भयभीत अस्मिन इस सरित जले नदी के जल में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे बहुत भयभीत हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्ति भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीड़ार्थम याचयामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। भगवान में अनंत शक्ति होती है, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला में सत्यव्रत से रक्षा की याचना की। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले दो रविवारों से भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत अद्भुत अवतार की चर्चा हम कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न युगों में प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो उनका अस्तित्व, उनका रूप, उनके क्रियाकलाप ये सदैव दिव्य ही रहते हैं। कभी भी भगवान के अवतार को भौतिक या साधारण या लौकिक नहीं समझना चाहिए। चाहे भगवान किसी सिंह के रूप में प्रकट हो जाएं, या किसी पक्षी के रूप में, या नर समूह में, या ऋषि समूह में, या जलचर प्राणियों के समाज में प्रकट हो जाएं, भगवान भगवान ही रहते हैं। फिर भी भगवान के प्रत्येक अवतार के बारे में लोगों को कोई ना कोई भ्रांतियां रहती हैं, और जब तक हम अधिकृत ग्रंथों के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, इनसे हम सुनते नहीं हैं, हम भगवान के अवतारों के जो वास्तविक तत्व हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। साथ साथ में जब भगवान के अवतारों की कथाओं को हम सुनते हैं तो मन और हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, इसके बजाय कि हम संसार के लोगों की कथाएं सुनते रहें कि कौन से अभिनेता अभिनेत्री ने क्या किया है, कौन खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, राजनेता क्या कर रहे हैं, ये सब सुनने के बजाय भगवान के अवतारों की कथाएं हम सुनें तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान का मत्स्य रूप ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि ये एक ऐसी योनि है जिसको हम बहुत ही निम्न मानते हैं। ये एक पशु भी नहीं माना जाता, न पशु न पक्षी। इसलिए भगवान ने ऐसे कार्य क्यों किए, ऐसे रूप क्यों स्वीकार किया, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे महाराज परीक्षित। इसलिए उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से ये सब पूछा तो ये भी जानना चाहते थे कि किस भक्त की रक्षा करने के लिए आए, किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आए भगवान इस विचित्र रूप में। क्योंकि भगवान जब भी किसी कार्य करने के लिए आते हैं तो उपयुक्त व्यवहार करते हैं, उपयुक्त रूप स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि पहली बार जब वो आए ब्रह्मा जी के इस दिन में, तो उनको वेदों की रक्षा करनी थी, सब जगह प्रलय हो चुका था ब्रह्मांड के भीतर, इसलिए उन्होंने एक मछली का रूप स्वीकार कर दिया। और ऐसा नहीं कि क्योंकि वो मछली के रूप में थे तो बड़े बड़े असुरों का वध करने में सक्षम नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो वेदों की रक्षा उन्होंने की। ब्रह्मा जी उनके दिन के अंत में सो गए थे, उनकी नींद में से जब वो जब सोए हुए थे तो हयग्रीव नाम का जो असुर था उसने वेदों को चोरी कर लिया। और फिर भगवान प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी के अगला दिन प्रारंभ हो गया, तो हयग्रीव नाम के असुर का वध करके भगवान ने वेदों की रक्षा की। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि और एक बार ब्रह्मा जी के इसी दिवस में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए, मछली के रूप में प्रकट हुए, छठे मनमंत्र में। पहली बार प्रकट हुए पहले मनमंत्र में, उस मनमंत्र में मनु का नाम था स्वयंभुव मनु, और छठे मनमंत्र में मनु का नाम था चाक्षुष मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 14 मनु होते हैं, और इस समय हम 7वें मन्वंतर में हैं, और हमारे मनु का नाम है वैवस्वत मनु। तो ये पहले और छठे मन्वंतर में मत्स्य अवतार प्रकट हुए, ऐसे हमने सुना है पिछले 2 रविवारों से। और जब वो प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, वह प्रकट हुए कौन से नदी में, कृतमाला। तो पिछले रविवार वो काफ़ी विस्तार में कृतमाला नदी की चर्चा हम कर रहे थे, इसका इतिहास क्या है, महात्म्य क्या है, वहाँ पर कौन सी सुंदर लीलाएं हुई थी भगवान की, उनके भक्तों की। हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतने सारे तीर्थ स्थान यहाँ पर भारत भूमि में हैं, आज भी हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि राजा सत्यव्रत जो बहुत ही धर्मपरायण राजा थे, भगवान के भक्त थे, वो जब कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो उस समय उन्होंने तर्पण के लिए जल अपने हथेली में ले लिया, और उस समय उनके हथेली के जल में उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली आ गई है वहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि अरे जल में मछली थी, मैंने जब जल लिया मेरे हथेली में तो ये मछली किसी न किसी तरह से आ गई। ये किसी न किसी तरह से नहीं हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि ये मछली स्वयं भगवान थी। परंतु उस समय सत्यव्रत राजा को ये पता नहीं था। तो सत्यव्रत राजा ने सोचा कि ये तो केवल एक छोटी मछली है। सत्यव्रतोंजलिगताम सहतोयेन भारत उत्सर्ज नदी तोये शफरीम द्रविडेश्वरः। द्रविड़ देश के ईश्वर के राजा थे सत्यव्रत। द्रविड़ देश अर्थात विंध्या पर्वत के जो दक्षिण भाग में है उसे द्रविड़ देश कहते हैं, दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहते हैं। तो सत्यव्रत राजा श्रीमद् भागवतम के अनुसार ऐसे द्रविड़ देश में रहा करते थे, और क्योंकि कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज जहां पर तमिलनाडु केरला आदि है वहां पर शायद रहा करते थे। कर्नाटक केरल तमिलनाडु के प्रांत में उस भाग में रहा करते थे। तो उन्होंने इस तरह से देखा इस मछली को, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये मछली मेरे हाथ में आ गई और मछली को तो जल में रहना चाहिए, ये जल से मैंने मछली को लिया है और जल में ही वापस मछली को डालना चाहिए ताकि मछली तैर सके, मछली वहां पर जी सके। आजकल बड़े पैमाने पर लोग मछली खाते हैं, है ना, बड़े बड़े जाल वगैरह लेकर जाते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में आज बीच समंदर में चले जाते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में रोज़ मछलियां पकड़ी जाती हैं, खाए जाते हैं, और केवल मछलियां नहीं और तरह तरह के और चीज़ें हैं, जो भी जल में मिल जाता है प्राणी वो खा लेते हैं। आजकल की समस्या ऐसी है कि जलचर प्राणियों की बात नहीं, जो भी हवा में उड़ता है, जो भी जमीन पे चलता है, सब खाद्य पदार्थ मानते हैं। इसलिए कोई विवेक नहीं करते हैं लोग कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो खैर राजा सत्यव्रत उस तरह के नहीं थे, तो उन्होंने तैयारी की उस मछली को वापस अंदर रखने के लिए। तो ये सारे विस्तार में हमें इसलिए चर्चा करना चाहिए कि मत्स्य अवतार जैसे कथाएं बार बार हम नहीं सुनते हैं, और बाहर तो विरला ही कोई ऐसी बातें करते हैं, इसलिए हम थोड़े विस्तार में जाएंगे, और ताकि हम भगवान के विविध अवतारों के बारे में ऐसे सुन पाएंगे, ऐसे चिंतन मनन करके हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो जैसे ही राजा परीक्षित उस मछली को जल में वापस रखने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, तम आह साति करुणम, तो अति करुणा में ढंग से वो मछली कहने लगी, बात करने लगी, महाकारुणिकम रिपम, किनको कहने लगे, राजा जो बहुत करुणामय थे, और वो कहने लगे कि यादोभ्यो ज्ञाति घातिभ्यो, कि यहाँ इस जल में ज्ञाति घातिभ्य, यहाँ अन्य मछलियों को खाने वाले जो बड़े मछलियाँ हैं बहुत सारे हैं, यादोभ्य अर्थात जो जलचर प्राणी होते हैं, तो यहाँ जल में हे राजन कृतमाला नदी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मछलियां हैं जो छोटे मछलियों को खा जाते हैं। दीनम माम दीन वत्सल, कि हे दीन वत्सल, जो बेचारे होते हैं जो दीन होते हैं उनके ऊपर करुणा या प्रेम करने वाले आप हैं राजन, और मैं तो बहुत दीन हूँ, तो मेरी रक्षा कीजिए, मुझे वापस इस जल में मत डालिए। क्यों मत डालिए, क्योंकि ये बड़े मछलियां मुझे खा जाएंगी। कथम विसृजसे राजन भीतामस्मिन सरिज्जले, तो इस प्रकार से आप क्यों मुझे इस नदी में वापस डाल रहे हैं, कथम क्यों विसृजसे आप डाल रहे हैं हे राजन, भीतामस्मिन सरिज्जले, मैं बहुत भयभीत हूं इस जल से। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, और यही इसी श्लोक का उच्चारण हमने अब किया थोड़ी देर पहले। तो राजा को निश्चित ही बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे मछली, बात करने वाली मछली, और अभी इस तरह से बात कर रही है। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने मत्स्य पुराण का एक श्लोक बतलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तिर भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन है। तो भगवान जो कि जनार्दन हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी शक्ति अपार है, अनंत है। वैसे भगवान की एक ही शक्ति है, परंतु ये एक शक्ति का विस्तार इतने रूपों में भगवान करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु भगवान की एक शक्ति के विविध रूप हो जाते हैं। परंतु मूलतः भगवान की शक्ति तो एक ही है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति। तो अनंत शक्तिर भगवान, तो वो भगवान जिनका नाम जनार्दन है, उनकी शक्ति अनंत है, अपार है। और ऐसे अनंत शक्ति युक्त भगवान जो हैं, उन्होंने क्या किया है, मत्स्य रूपी, मत्स्य का रूप, एक मछली का रूप धारण कर लिया है। कैसे धारण कर लिया, क्रीडार्थम, क्रीडा के लिए, क्रीडा अर्थात खेल, खेल में। जैसे कभी कभी कोई घर में माता या पिता जो होते अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो बच्चा कोई शिकारी बन जाता है या कोई सैनिक बन जाता है और माता पिता घोड़ा बन जाते हैं, तो बच्चा माता पिता के ऊपर कंधे पर चढ़ जाता है। तो एक क्रीडार्थम, तो घर में क्रीड़ा हो रही है, इससे क्या केवल बच्चे को प्रसन्नता होती है, ज़्यादातर तो बड़ों को प्रसन्नता होती है। क्यों, क्योंकि बाहर के संसार से इतने ऊब गए होते हैं, संसार के समस्या इतने भारी हो जाते हैं कि सोचते हैं चलो हम भी बच्चे की तरह खेलें। तो खैर, क्रीड़ार्थम, तो ये भी एक साधारण व्यक्ति भी जब इस तरह की क्रीड़ा कर सकता है, वो असली घोड़ा तो नहीं बन सकता, हाँ चाहे तो ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कि अगले जन्म में वो घोड़ा बन जाए, वो दूसरी बात है। परंतु इस जन्म में जब मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो वो केवल नकल ही कर सकता है, तो वो नकल भी एक क्रीड़ा है। परंतु जब भगवान ऐसे करना चाहते हैं, तो तुरंत अपने आप को विस्तारित करके एक मछली का रूप धारण कर सकते हैं और क्रीड़ा करते हैं भगवान अपने आनंद के लिए। तो जब वो माता पिता घोड़ा बन जाते हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चे को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं की प्रसन्नता के लिए भी, तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान विभिन्न अवतारों को स्वीकार करते हैं, तो अपने प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का आधार या उद्देश्य आनंद है। प्रभुपाद जी ने एक बार ये कहा था, जब किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि ये सब कुछ जो है ये क्यों है, ये क्यों है सब, ये पृथ्वी क्यों है, ये तारे आज सब आसमान और ये नक्षत्र और सूर्य चंद्र, ये पानी जल पेड़ आदमी जानवर, ये पृथ्वी सब क्यों है, क्यों नहीं होते तो कितना अच्छा होता, हम सब ये बात ही नहीं कर रहे होते, ये सब क्यों है। तो पहले तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों नहीं होना चाहिए, अब है। फिर प्रभुपाद ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर एक शब्द में मैं दूंगा और वो है आनंद। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, चाहे वो भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, केवल एक कारण के लिए और वो है आनंद। फर्क इतना यही है, भौतिक सृष्टि में झूठा आनंद है, आध्यात्मिक सृष्टि में सच्चा आनंद है। तो जो झूठे आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, जो भगवान से विमुख होकर, भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, नकली भगवान, नकली पुरुष बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की है। तो यहां पर आके ये अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर सकते हैं, सदा निष्फल रहते हैं वो दूसरी बात, परंतु आशा सदैव रहती है हृदय में, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे सपने जन्म जन्मांतर से हम देखते आए हैं, सपनों को सार्थक करने का प्रयास करते आए हैं, और समाज में सारे ये प्रेरणा देने वाले लोग आते हैं, आपके सपने को साकार कीजिए आप। बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को कहते हैं आप सपने देखिए, सपने को पूरा करने की क्षमता आप में है। और यदि आप अपने सपने को पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के सपने को पूर्ण करने में मदद करेंगे उनकी। इसलिए अपने सपने को साकार कीजिए। परंतु क्या हम सपने देखने के लिए आए हैं? सपना ये तो उद्देश्य नहीं है। सपने में हम सफल भी हो गए फिर भी सपने का ही आनंद है ना। सपने में हम देखते हैं हम राजा बन गए, बहुत आनंद का अनुभव होता है, लेकिन नींद से जाग जाते हैं तो सोचते हैं अरे 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 वो तो सपना था। तो इसलिए सपने के आनंद में और जागृत अवस्था के आनंद में भौतिक सृष्टि में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए ये सब झूठ है, मिथ्या है। और हमें आनंद की खोज में हम सब हैं, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। परंतु हमें ये पता नहीं है कि सच्चा आनंद केवल भगवान की भक्ति में ही मिल सकता है। तो यहां हम जो भी क्रीड़ा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो आनंद को ले लेते हैं, मुट्ठियों में उठा लेते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में से निकल जाता है। हमें लगता है कि बस आनंद मिल रहा है, परंतु मिलता नहीं है। परंतु जब भगवान को इस सपना देखते हैं तो वो सपना पूर्ण हो जाता है। भगवान के सपने में और उनके सत्य की अवस्था में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान भी ऐसे क्रीड़ा करते हैं आनंद के लिए, और भगवान की क्रीड़ाओं से सबको आनंद होता है, विशेष रूप से उनके भक्तों को। जो असुरी वृत्ति के लोग होते हैं उनको कष्ट होता है। तो भगवान विशेष रूप से क्रीड़ार्थम याचयाम आश। तो इस बार क्रीड़ा किस प्रकार की उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया, मत्स्य रूपी। याचयाम आश, याचना की उन्होंने। जब मछली का रूप स्वीकार किया तो उन्होंने याचना की, प्रार्थना की, किनसे? सत्यव्रतम नृपम, राजा सत्यव्रत से। स्वयं उन्होंने ये रूप धारण करके सत्यव्रत राजा से याचना की, अपने भक्त के शरण में गए। इस समय अभी तक सत्यव्रत राजा को पता नहीं था कि ये मछली का वास्तविक परिचय क्या है। तो मैं बहुत भयभीत हूं हे राजन, मुझे इस जल में फिर से मत डालिए। फिर आगे सत्यव्रत राजा ने सोचा कि ठीक है, हृदय से करुणामय थे। तो जब कोई करुणामय व्यक्ति करुणा करता है किसी के ऊपर तो उसे अच्छा लगता है कि मैं करुणा कर पाया। और एक स्वभाव से जो करुणामय व्यक्ति होता है उस वो कभी अनायास किसी को कष्ट पहुंचाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो करुणामय वृत्ति वाले व्यक्ति को जब कोई अवसर मिल जाता है करुणा प्रदर्शित करने के लिए तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो राजा को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ कि अरे ये बोलने वाली मछली है और कह रही वापस जल में मत डालो, मछली का स्थान तो जल में ही है। फिर भी अब जब मछली ने कहा कि मत डालो और इतने करुणा के भाव से ये मछली की वाणी है तो ठीक है, मैं रक्षा करूंगा इस मछली की। तो फिर बड़े आनंद से राजा ने ठान लिया कि मैं अब इस मछली की सेवा करूंगा, मछली की रक्षा करूंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि राजा ने मछली की सेवा की इस प्रकार से, रक्षा प्रदान करके। और क्योंकि वो मछली भगवान थे स्वयं, यद्यपि राजा को इस बात का ज्ञान नहीं था फिर भी राजा को खूब लाभ प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति अर्थात वो सेवा, वो लाभ जो हमें प्राप्त होता है अनजाने में भगवान की सेवा करने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ऐसे अज्ञात सुकृति कर करके जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर से हम अंततः भक्ति में पहुंच सकते हैं। जैसे उदाहरण, हम लोग नाम संकीर्तन करके जाते हैं, हमारे राज नारायण प्रभु सबको संकीर्तन में, नगर संकीर्तन में ले जाते हैं एकादशी के दिन और अन्य दिनों में भी। बहुत सारे आप में से भक्त आते हैं, उत्साह से नगर में संकीर्तन करते हुए चलते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो भक्त होते हैं या जिनका झुकाव भक्ति की ओर होता है, तो वो बहुत प्रसन्नता से इसको देखते हैं, सुनते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो इतने पुण्यवान नहीं होते हैं और वो सोचते हैं ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। और थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े जिज्ञासु होते हैं, ये लोग कौन है, क्या करते हैं, बस ऐसे खड़े होकर देख जाते। तो जो व्यक्ति एक अनुकूल भाव से देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उनको ये बहुत लाभ होता है। भले उनको पता हो या न हो कि भक्ति क्या है, संकीर्तन का महत्व क्या है, परंतु वो सुन रहे हैं ना, तो उनको लाभ हो जाता है। और ऐसे भगवान का नाम सुन सुनकर एक न एक दिन इस जन्म में या तो किसी आने वाले जन्म में वो हम सब जैसे बन जाएंगे, वो भी मंदिर में आएंगे, कथा में बैठेंगे, कीर्तन करेंगे। तो आज यदि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों में हम सब ने अज्ञात सुकृति की हुई है और इस जन्म में भी हमने शायद की होगी। इसलिए भगवान ने हमें अवसर प्रदान किया है, चलो राधा गोकुलानंद मंदिर में जाओ और वहां पे सत्संग कार्यक्रम होते हैं, वहां पे शामिल हो जाओ, भक्ति में आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से अज्ञात सुकृति की पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, तब व्यक्ति भगवान के सुदृढ़ रूप से भक्ति करता है। जिस प्रकार से किसी को कोई मकान बनाना होता है तो थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो अनेक वर्षों से वो व्यक्ति संघर्ष कर करके, परिश्रम कर करके पैसे इकट्ठा करते रहता है। और ऐसे एक साल में इतना किया, फिर दो साल में, फिर पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, फिर वो घर के निर्माण कार्य को शुरू कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से अनेक जन्मों के अज्ञात सुकृति के पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है, तब भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम भक्तों के संग में आ जाएं और सुदृढ़ रूप से भक्ति करना प्रारंभ करें। इसलिए जब हमें भक्तों के संग का अवसर मिल गया है, जैसे कि हम सबके लिए है, तो हमें इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। अभी हमने शुरू किया है ना मंदिर आने के लिए, तो बंद नहीं करना है, किसी भी हालत में भक्ति को छोड़ना नहीं है हमें। तो खैर, ये अज्ञात सुकृति है। उसी प्रकार से जब किसी को हम प्रसाद देते हैं, आप रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं और आपके साथ में कोई हैं, कोई बैठे हुए हैं सामने, उनको थोड़ा कुछ आप दे देते हैं, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, हाँ प्रसाद है ठीक है ले लेते हैं, तो उनको लाभ हो जाता है, अज्ञात सुकृति। कई बार ऐसे लोग होते हैं, यदि आप उनको बताएं कि ये प्रसाद है तो नहीं लेंगे, उनको बताया जन्मदिन है तो जन्मदिन का ये कुछ है हमारा ले लीजिए, तब वो ले लेंगे। यद्यपि उनको पता नहीं है कि ये प्रसाद है, फिर भी क्योंकि उन्होंने इस प्रसाद का सेवन किया है, उनको लाभ होगा। ये है अज्ञात सुकृति, अनजाने में की गई सेवा भगवान की। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये सारे जितने भी प्रचार प्रसार के कार्य होते हैं, उनको हमें और बढ़ाना चाहिए। कल हम निलजी गांव में गए थे, बहुत सुंदर उत्सव वहाँ भक्तों ने आयोजित किया था, वार्षिक उत्सव था, 7 दिन की कथा, उसमें से अंतिम दिन में हम गए थे। पहले 6 दिन सुदामा प्रभु गए थे, अंतिम दिन फिर मैं गया। और वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भक्तों ने की थी और 4000 लोगों के लिए प्रसाद। सारे लोग प्रवचन के लिए नहीं आए जो प्रसाद ले रहे थे, फिर भी अब उनको पता है कि वार्षिक कार्यक्रम होता है यहाँ पर, तो वहाँ प्रसाद तो मिलता है, तो कम से कम प्रसाद के लिए तो आते ही आते हैं, परंतु अच्छी भावना से आते हैं प्रसाद के लिए। कभी कभी इसलिए नहीं आ पाते हैं कि उनके कोई खेत के काम होते हैं और कोई व्यवसाय के काम होते हैं, परंतु खैर आते तो हैं और कतार में खड़े होते हैं और बड़े आनंद से श्रद्धा से लेते हैं प्रसाद। तो जो नियम पालन करने वाले भक्त हैं उनको तो लाभ होता ही है प्रसाद लेकर, परंतु जिनको भक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो भी जब प्रसाद को स्वीकार करते हैं तो उन्हें कितना लाभ होता है, ये भी अज्ञात सुकृति। इस प्रकार से ये अज्ञात सुकृति राजा सत्यव्रत ने कर ली। कैसे? जब उन्होंने ठान लिया कि मैं इस मछली की रक्षा करूंगा। केवल यदि कोई भक्त, कोई व्यक्ति एक भक्त के बारे में अच्छा सोचे, भले वो इसलिए न भी सोचे कि ये भक्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है, माता है, जो भी है, परंतु जब एक व्यक्ति किसी भक्त के बारे में अच्छा सोचता है और उसकी मदद करना चाहता है तो उसकी अज्ञात सुकृति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमें इस तरह से कार्य करने चाहिए समाज में, ताकि लोग हमारे प्रति अच्छी भावना रखें, जिससे कि उनकी अज्ञात सुकृति प्रारंभ हो सके। यदि हम ऐसे कार्य करें और विशेष रूप से उनसे ऐसे व्यवहार करें जिनसे कि वो क्रोधित हो जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, तो फिर वो अपराध कर बैठेंगे, वैष्णवों की निंदा करेंगे, भगवान की निंदा करेंगे। तो इसलिए अज्ञात सुकृति का अवसर प्रदान करना सारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इच्छा को यदि करता है भक्त की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, तो वो भी लाभदायक होता है। तो खैर, आगे जब भगवान ने ऐसे, सत्यव्रत राजा ने ऐसे ठान लिया, तो उन्होंने क्या किया, जाके एक कलश लिया। कलश जानते हैं ना, छोटा मटका। तो एक कलश में जल था, कमंडलू में। तो उस छोटे से कलश में उन्होंने उस मछली को रख दिया। तो जब मछली उस कलश में रह गए तो राजा ने सोचा चलो अब मछली संतुष्ट है, परंतु ये मछली तो कोई साधारण मछली नहीं, ये भगवान है। तो एक रात में ही वो मछली का विस्तार इस तरह से हुआ कि वहां पे मछली को लगा कि मेरे लिए अच्छा स्थान नहीं है। सातु तत्रैक रात्रेण वर्धमाना कमंडलो, सा मतलब वो मछली, तत्र वहां पर एक रात्रेण, एक रात्रि में वर्धमाना बहुत बड़े हो गए, विस्तार हुआ, वृद्धि हुई उस मछली के शरीर में, कमंडलो उस कलश के भीतर। और उस समय असुविधाजनक परिस्थिति निर्माण हो गई उस मछली के लिए। तो जब वो कलश छोटा हो गया तो फिर मछली ने आगे चल के कहा, न अहम कमंडलाव अस्मिन कृच्छ्रम वस्तुम इहोत्सहे, कि हे राजन, इस कमंडलों के भीतर न अहम कमंडलाव अस्मिन इह उत्सहे, कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अभी ये स्थान बहुत असुविधाजनक हो गया है मेरे लिए, इसलिए किसी अन्य स्थान में मुझे रख लीजिए, यहाँ मैं सुखी नहीं हूँ। तो ऐसे स्थान कोई ढूंढ लीजिए मेरे लिए जहाँ मैं अच्छी तरह से रह सकूँ। तो फिर राजा ने सोचा ठीक है, तो राजा ले गए उस मछली को, एक बड़ा कुआं था उनके प्रांत में कहीं, तो राजा ने उस मछली को जाकर उस कुएं में रख दिया। छोटा सा कुआं नहीं था, काफी बड़ा था कुआं। तो उस कुएं में तो रख दिया, और कुएं में रहने के बाद और जैसे ही उस कुएं में रखा उस मछली को, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हस्तत्रयम् अवर्धत तत्र क्षिपिता मुहूर्तेन। मुहूर्तेन मतलब एक क्षण में हस्तत्रयम् अवर्धत, अवर्धत मतलब वर्धन हो गया, वृद्धि हो गई, और तीन हाथों से ज्यादा इतनी लंबाई से और बढ़ गया उनका शरीर उस मछली का एक क्षण में। जैसे ही उस बड़े कुएं में रखा तो मछली का शरीर इतना और बढ़ गया। अब राजा को बहुत आश्चर्य होने लग गया था कि एन रे, ये क्या छोटी सी मछली थी, फिर हमने कमंडलों में रख दिया, कमंडलों में बड़े हो गए ये मछली, अभी यहाँ पे कुएं में रख दिया, कुएं में भी इतने बड़े हो गए। तो इस समय उस बड़े कुएं में रहकर उस मछली ने कहा त्वाहम शरणम गता, त्व अहम शरणम गता, त्व मतलब आपके, अहम मतलब मैं, शरणम गता मतलब मैं आया हुआ हूं, मैं आपके शरण में आया हुआ हूं। हे राजन, न म एतत अलम राजन सुखम वस्तुम उदंचनम, तो ये जो कुआं है मेरे लिए सुखप्रद स्थान नहीं है। पृथु देही पदम मह्यम, इसे इसलिए मुझे कोई बड़ा कोई जलाशय प्रदान कीजिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं, सुखी होकर रह सकूं, ये जगह भी मेरे लिए बहुत कम हो गई है, अभी यहां मैं रह नहीं सकता। जैसे हम लोग भी देखते हैं कभी कभी जब परिवार बड़ा हो जाता है या आश्रम भी बड़ा हो, आश्रम में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर दूसरे स्थान को बनाने की आवश्यकता होती है कि दूसरा घर बनाएं, दूसरा को नया आश्रम बनाएं, इसलिए आश्रम बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो चाहे जैसे हमारे लिए भी ऐसे समस्या होती है, तो भगवान ने देखा कि अब मेरे लिए ये निवास स्थान बहुत छोटा हो गया है, तो बड़ा कर दी, बड़ा स्थान मुझे रहने के लिए दे दीजिए। तो राजा को आश्चर्य तो हुआ ही, परंतु उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं मुझे करना चाहिए। शायद अभी तक भी राजा के मन में ये विचार नहीं आया था कि ये भगवान हैं, क्योंकि ऐसे अद्भुत प्राणी भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो अभी भी भगवान राजा सत्यव्रत ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मछली को कुएं में से उठाकर वो एक जलाशय में, उनको एक सरोवर में ले गए। तथा आदाय स राज्ञा क्षिपिता राजन सरोवरे, तो हे राजन, उस समय तो राजा ने उस मछली को लिया और एक सरोवर में फिर उनको रख दिया। परंतु क्या, वहां भी महामीनो अन्ववर्धत, वो मीन अर्थात मछली, तो वो मीन वो भी महामीन हो गया वहां पर। तो उस सरोवर में जाके अचानक एक क्षण में वो उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वहां उस सरोवर में भी जगह नहीं रहा। तो राजा सत्यव्रत को और आश्चर्य हुआ। फिर मछली ने क्या कहा राजन से, न एतान में स्वस्तये राजन उदकम सलिल औकसः, कि हे राजन, न एतत में स्वस्ते राजन, इधर भी मैं सुखी नहीं हूं, तो कृपया कोई ऐसे स्थान को ढूंढ निकालिए जो कि हम जैसे जल में रहने वाले प्राणी, सलिल ओकस मतलब जो रहने वाले हैं, और सलिल अर्थात जल, तो जैसे मुझ जैसे जल में रहने वाले प्राणियों के लिए कोई उचित या उपयुक्त स्थान कोई बताइए, क्योंकि यहां पर भी मेरा रूप इतना, शरीर इतना बड़ा हो गया है कि ये सरोवर भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। निधेहि रक्ष योगेन हृदय माम अवदासिनी, हृदय अर्थात एक और बड़ा सरोवर, जैसे कालिया हृदय आपको याद होगा कालिया दमन लीला से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कालिया यमुना के से संबंधित एक ह्रद या एक सरोवर था, उसमें रहा करता था। तो एक ऐसे विशाल कोई जलाशय में मुझे रख लीजिए जहां पे जल का, जल की कोई सीमा न हो, जल का अंत न हो। तो फिर वहां जाके राजा ने सोचा कि ठीक है, तो बहुत सबसे बड़ा जलाशय जो जमीन के ऊपर उपलब्ध था उनके राज्य में, वहां जाके उन्होंने रख दिया उस मछली को। परंतु वहां पर भी मछली का आकार बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और अंत में और कोई उपाय नहीं रहा राजा के पास, तो उन्होंने जाके समुद्र में मछली को रख दिया। समुद्रे प्राक्षिपच झषम, झषम अर्थात एक मछली, परंतु विशाल मछली को झषम कहते हैं। तो और कोई चारा नहीं रहा राजा के पास, बड़े समुद्र में जाके उन्होंने रख लिया उधर। तो सबसे पहले भगवान मत्स्य राजा सत्यव्रत के हथेली में आए, उसके बाद कहाँ गए, कमंडल या किसी कलश में गए, उसके बाद कुएं में गए, उसके बाद सरोवर में गए, उसके बाद बड़े जलाशय में गए, उसके बाद समुद्र में गए। अब राजा सत्यव्रत को समझ में आया, क्या समझ में आया, कि ये कौन है, ये भगवान ही होंगे, नहीं तो इस तरह की लीला कौन कर सकते हैं। मछली हो या अन्य कोई प्राणी, ऐसे साधारण या असाधारण व्यक्ति भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सोच लगा कि ये कौन है जो कि यहाँ पर अभी हमारे सामने आए हैं। तो खैर, हम कल्पना कर सकते हैं कि राजा सत्यव्रत के मन में क्या विचार चल रहे होंगे उस समय। परंतु राजा सत्यव्रत कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, और आगे चल के अगले मनमंत्र में वही मनु बनने वाले थे। तो आज हमारे जो मनु हैं वो पिछले मनमंत्र में राजा सत्यव्रत थे। तो आज यही सत्यव्रत राजा मनु बने हैं, हमारे मनु। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान की प्रार्थना की। तो उस समय उनको समझ में आया कि ये स्वयं भगवान ही होंगे। तो पांच सुंदर श्लोकों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि राजा सत्यव्रत ने किस तरह से भगवान की स्तुति की, तो अवश्य आप अगले रविवार को दोपहर में सत्संग में आइए, और फिर राजा सत्यव्रत की प्रार्थना को हम सुन पाएंगे, और उसके बाद फिर क्या हुआ ये भी हम जान पाएंगे। और आज हम थोड़े जल्दी प्रवचन को समाप्त करते हैं, वैसे जल्दी तो नहीं, 2:15 बजने को आए, क्योंकि आज 4 बजे एक बहुत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और आशा करते हैं कि आप सब इसका लाभ लें। इसकी सूचना अभी अभी हम सुनेंगे। तो कोई प्रश्न है किसी के, 2-3 प्रश्न हो तो बस। क्या सत्यव्रत उत्तानपाद के भाई? नहीं नहीं, वो प्रियव्रत थे। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज, क्या ये आवश्यक है कि भक्ति के लिए पहले अज्ञात सुकृति पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी वो भक्ति ज्ञात रूप से कर सकते हैं, कि डायरेक्टली वो ज्ञात रूप से?
साधारणतः ऐसे ही होता है। भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता चाहिए, किसी भी चीज के लिए योग्यता चाहिए, सही है ना? किसी को विश्वविद्यालय में भर्ती होना है तो कम से कम 12वीं कक्षा तो पास होनी चाहिए। किसी को डॉक्टर बनना है, योग्यता चाहिए, है ना? तो हर चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। तो भक्त बनने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है, और साधारणतः वो योग्यता क्या है कि हमारे अज्ञात सुकृति कि पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुकी हुई होनी चाहिए, ये साधारण एक नियम है। और जब अज्ञात स्वीकृति बढ़ जाती है फिर हम ज्ञात रूप से भी भक्ति करने लगते हैं, परंतु इतने गंभीरता से नहीं। फिर इससे भी हमारी पूंजी की वृद्धि होती है और फिर आगे चल के हो सकता है उस जन्म में या आने वाले जन्म में हम फिर गंभीरता से भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। विरला ही दुर्लभ, लाखों 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 में से कोई एक ऐसे जीव हो सकते हैं जिनको ऐसी कृपा मिल जाती है कि कोई साधन आदि किए बिना, कोई अज्ञात स्वीकृति किए बिना अचानक भगवान या भगवान की शुद्ध भक्त की कृपा मिल सकती है। ऐसे संभव है और ऐसे उदाहरण थोड़े बहुत पाए जाते हैं शास्त्र में, परंतु वो एक सर्वसाधारण नियम नहीं है। साधारण नियम तो यही है कि धीरे धीरे से अनेक जन्म लगते हैं इसके लिए। जैसे किसी व्यक्ति को पीएचडी करना है, पीएचडी जानते हैं ना, बहुत बड़ी डिग्री होती है कॉलेज में, बीए एमए पीएचडी। तो व्यक्ति को पीएचडी करना है तो बीए करना है, फिर एमए करना है, फिर पीएचडी कर सकते हैं वो। ये साधारण एक रास्ता है, परंतु जब कोई ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान बड़े बड़े कोई व्यक्ति होते हैं तो उनको कभी कभी वो विश्वविद्यालय एक मान सम्मान के हेतु उनको पीएचडी डिग्री दे देते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया है, संशोधन नहीं किया है इसके लिए, उनको दे देते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं सोच सकते ना कि आपने उनको दिया इस तरह से तो हमें भी दीजिए, ऐसे नहीं होगा। हमें वो बीए डिग्री करना होगा, एमए डिग्री करना होगा, फिर जाकर पीएचडी के लिए भर्ती हो सकते हैं। तो साधारणतः ये अज्ञात स्वीकृति करते करते हम भक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अंतिम प्रश्न एक, या माइक।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो मत्स्य अवतार ज्यादातर प्रचलित नहीं है, तो ऐसा भी मन में आता है जो मत्स्य अवतार के पूजा करने के बाद जो धाम को जाएंगे तो भगवान उधर जो उनका जो धाम है या मछली का रूप में है या चतुर्भुज रूप में,
क्यों नहीं? भगवान के लिए क्या फर्क पड़ता है कौन से रूप में है, परंतु हम भगवान कृष्ण के भक्त किस रूप में है? विशेष रूप से जो बांसुरी बजाते हैं, हम वृंदावन में जाना चाहते हैं। यदि कोई भक्त भगवान के मत्स्य लोक में जाना चाहते हैं तो स्वागत है उनको, वो भी जा सकते हैं, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हो जाएंगे। परंतु हमारा कहना ये है कि आप जब किसी बड़े व्यक्ति को मिलना चाहते हो तो इस तरह से क्यों नहीं मिलते हो जहाँ सीधे उनके घर में जाके मिलो उनसे, जहाँ वो अपने घर में आराम से रहते हैं, सबसे निकटता से उनकी पहचान कर लो ताकि उनसे ऐसी लीला में। परंतु है ये वही व्यक्ति मत्स्य अवतार, अर्थात जब कोई व्यक्ति कहीं स्नान करने जाता है, समंदर में जाता है, तो वहाँ जाके किसी बड़े व्यक्ति से मिलोगे कि हम मंदिर बना रहे हैं आप दान दीजिए, बड़े अब मैं स्नान करने जा रहा हूँ समंदर में, अब थोड़ी समय है ये बात करने, घर में आ जाना। घर में जाके मिलेंगे ना तो घर में वो थोड़ा सुखी रहता है। तो अवश्य भगवान मत्स्य लोक में भी रह रहे हैं होंगे, क्यों नहीं, भगवान के लिए कुछ भी संभव है। परंतु भगवान के ऐसे विविध अवतारों के बारे में श्रवण करके हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी प्रेम अधिक बढ़ता है कि देखो हमारे भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, किस तरह के रूप स्वीकार करते हैं, किस तरह के मधुर कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। सब उपस्थित भक्तों का श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज के प्रवचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को। उपस्थित भक्तों से अनुरोध है तीन बार बहुत जोर हरि बोल से महाराज को धन्यवाद दें। अब हम विशेष रूप से उन भक्तों का स्वागत करना चाहते हैं जो आज मंदिर में पहली बार आए हैं। जो भी भक्त आज पहली बार आए हों उनसे अनुरोध है कृपया एक बार अपने स्थान पर खड़े हों तो हम अच्छे से आपका स्वागत कर सकेंगे। कृपया संकोच न करें, जो भी पहली बार आए हैं एक बार खड़े हो सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई और शिला प्रभुपाद से कि आज के दिन आपके भक्तिमय जीवन की बहुत उज्ज्वल शुरुआत हो, और यदि कोई भक्त किसी अन्य केंद्र नामहट्ट इत्यादि से भी पहली बार आए हो तो हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे मंदिर के भक्त हैं यहाँ पर श्रीमान संतोष मैत्रणी प्रभु, तो प्रवचनों के तुरंत बाद प्रभु जी आपसे मिलेंगे और आपको मंदिर की सूचनाओं के बारे में जानकारी देंगे, आपके यहाँ पर प्रसाद के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, तो आप सूचनाओं के बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रभु जी से मिलिएगा। जो भक्त बैठे हैं उनसे अनुरोध है पहले बार आने वाले भक्तों का बहुत जोरदार हरि बोल से स्वागत करें। धन्यवाद, कृपया बैठ जाइए। आगे की सूचनाएं इस प्रकार है, जैसा अभी महाराज जी कह रहे थे, आज शाम 4 बजे मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित की गई है। इस सेमिनार का विषय है आयुर्वेदिक कुकिंग, आयुर्वेदिक पाक कला, और इसको करने के लिए 2 वरिष्ठ भक्त मुंबई भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से आए हैं, श्रीमान निर्मल चंद्र प्रभु एवं सोनार सखी माता जी। तो भक्तों से अनुरोध है 4 बजे के ठीक